अब क्या किया जाए? तो ईमान की हिफाजत का पहला मरहला I-71 में वल मोमेनू नवल मोमिनातू बादहुम औलियाउ बाद। ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, ये सब एक दूसरे के साथी हैं। ये है पहला हल, ईमान वाला गिरोह ढूंढो, अपना सर्कल ईमान वालों में जाके बना लो। आप यहाँ कोर्स तो कर रहे हैं अकेले, हो सकता है आप 18 मंथ्स तक अकेले ही आते रहे अपनी कम्युनिटी में से निकल कर, ड्राइव करके या वॉक करके। इट्स पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। कुछ लोगों के तो इर्द गिर्द होंगे ही कोई नहीं, लेकिन याद रखिए इस कुरान के तकाजों पे आप अकेले नहीं चल सकते। हफ्ते में 4-5 दिन आप यहाँ अकेले आ सकते हैं, लेकिन वीकेंड के 3-4 दिन आप अकेले नहीं चल सकते। सीधी सी बात है। इसके लिए आपको खुद को स्ट्रांग करना है। इमेजिन कीजिए कि एक जगह किसान है और उसने छोटे 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 बीज डाले, छोटी सी एक क्यारी है ना, उधर से भी छोटे छोटे फूल निकले हैं कि एक पौधे से, और एक जगह कहीं एक अकेला बीज था वो भी उड़ गया, उड़ के पहुंचा वहीं उग गया। अब क्या हुआ? वो भी निकला, हवा चलेगी तो क्या होगा? वो जो अकेला है ना, वो कभी इधर, इधर से हवा चली तो इधर लुढ़क जाएगा, अगर हवा इधर की तो वो इधर जाएगा, और अगर ऊपर से ज़रा ज़ोर की धार से पानी भी पड़ गया ना, वो वहीं सो जाएगा। ये तो अंदर कुछ होगा तो उठेगा, वरना नहीं उठता। क्यारी के साथ क्या होगा? कभी आप हवा चलती देखा करें जहाँ दरख्तों के झुंड होते हैं, या कभी छोटे छोटे पौधे नहीं होते, गंदम जब लंबी लंबी उगी होती है या कपास, तो आप देखेंगे हवा चलती ना वो सारे यूं होते हैं। अब आप इमेजिन करें ना, 100 दाने थे इधर, अब वो एक जब इधर था ना, वो तो नीचे है तो दूसरा पूरा नीचे नहीं जाता, इसके ऊपर आ जाता, तीसरा, वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं। अभी ज़रा सा बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो जब इंसान लाइक माइंडेड लोगों के बीच में होता है ना, तो वो खुद को अकेला नहीं समझता। सबसे पहली चीज़ जो हमारे अपने ईमान के दिफा की है ना, आप अपना माहौल ईमान वालों वाला बनाओ। इसी को कहा कि वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिलहक्क व तवासौ बिस्सब्र। ये जो तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र है ना, ये नहीं हो पाता हमसे। आमनु है माशाल्लाह, 90% मुसलमान आमनु, 80% मुसलमान आमनु के बाद अमिलुस्सालिहात भी हैं। असल मसला तवासी बिल हक है, क्योंकि उसमें बातें सुननी पड़ती हैं, अपने बेगाने रिश्तेदार ख़ानदान। आप लिख ले तवासी बिल हक तवासी बिल सब्र के पीयर प्रेशर। ख़ानदान तो ये चाहता है, रिश्तेदार तो ये कहते हैं, शोहर जी तो ये कहते हैं, बेगम जी तो ऐसे खुश होती हैं, बच्चे जी फलां जी 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 करते करते अल्लाह जी को नाराज़ कर जाते हैं। जब तक हम अपने इर्द गिर्द एक खूबसूरत माहौल नहीं बनाएंगे, अलहुब्बु फिल्लाह बुग्ज़ु फिल्लाह। देखिए जब आप नेकियों पे आते हैं ना, हो सकता है 10 पारों तक आने तक आपकी कोई 5 दोस्तें तो आपको छोड़ गई हों, इल्ला माशाल्लाह, दैट्स ट्रू, 10 छोड़ गई हैं जी, 5 ही नहीं 10 ही छोड़ गई हैं, टोटल कितनी थी? आप उन 10 के बदले में 20 नहीं बना लें। मैं इसको जितना इंजॉय कर रही हूँ ना, आप उतना नहीं कर पा रहे। आपको गम यह है कि आपको तर्जुमा समझ आ जाए, आपके नोट्स बन जाए, मुझे इस वक्त कोई गम नहीं है। एक को भी मेरी बात नहीं समझ आती तो ना आए, लेकिन मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे लोग ईमान की सीढ़ी से उतर कर निफाक की सीढ़ी पे कदम कब लिखते हैं? ये लिखे जुमला, ये तो मैं आपको खुद कहूँगी कि आप लिखें। अच्छे भले ईमान पे चलते चलते हम उस सीढ़ी से या उस चेन से हम उतरते कब है? अपनी दोस्तों के पीयर प्रेशर से। बात वाज़े, क्योंकि हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है, फिर वो फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, अरे तुम रास्ता बदल के इधर लेना था, लेफ्ट लेना था, राइट। आप इमेजिन करें ना, 10 दोस्तें घर से निकली कहीं जाने में, एक ही डेस्टिनेशन थी, सब लहरा रहे थे, आपको जाके फील हुआ कि ये महफिल ठीक नहीं है जहाँ मैं जा रही हूँ, इट्स नॉट द वे आई शुड गो। आप फौरन एग्जिट लेती, जो ही आपने एग्जिट लिया, अब आपने तो अपने दिल से लिया माशाल्लाह, वो बाकी 9 बेचारियों को तो नहीं पता। फिर जो कोई देख रहा होगा ना आपकी गाड़ी को, वो कोई फ़ोन करेगा, कोई टेक्स्ट करेगा, कोई हॉर्न बजाएगा, कोई ब्लिंक करेगा, कोई इंडिकेटर देगा, अरे रुको रुको रुको। बस वो 9 लोगों के प्रेशर में आके आप फिर हेजिटेंट, बड़ी ज़रूरत होगी तो आप कहेंगे जाओ खुदा हाफिज़, बाद में रात को बात करेंगे। वरना होगा कि एक की कॉल दूसरे की कॉल, सम टाइम आपको ही कंफ्यूज कर देगी, आप दोबारा राउंड अबाउट से घूम के फिर उधर ही चल पड़ेंगे। सोहबत बहुत बड़ी बात है। मुझे किसी का कॉल याद आ रहा है, अगर मैं भूल नहीं रही तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला का ये कॉल है, कहते हैं कि बुरों की दोस्ती से बचो क्योंकि ये तुम्हें नेक लोगों के खिलाफ कर देंगे। सच है कि झूठ है? बुरे लोग तुम्हें बुरा नहीं बनाते, तुम्हें नेकों के खिलाफ कर देते हैं। सोच लो फिर, देख लो, सोचो फिर। मैं मना तो नहीं वैसे करती, ये हालात जब आते हैं ना तो इंसान की जिंदगी में एक जंग चलती है। अब देखिए, मैंने आपको पीछे मोहम्मद असद की बात कहते हुए भी सूरत निसा में डिटेल से सुनाया था कि वो कहते हैं कि हिजरत और तन्हाई साथ साथ, लोनली नाइट्स, लोनलीनेस इन क्राउड। ये हो ही नहीं सकता कि आप और मैं ईमान की सीढ़ियों पे चढ़े और तन्हा ना हो। शुरू में होना पड़ता है, हर एक होता है, लेकिन उसका इलाज इस आयत में बता दिया गया कि वल मोमिनून वल मोमिनात बादुहुम औलिया उबाद। इधर थोड़ी थोड़ी दोस्तियां ऐसी हटती जाएंगी। देखिए कतर अमी नहीं है, फिर बात कह दूं, मैंने आपसे बार बार कितनी दफा ये जुमला बोला, मुझे अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि बाद में मैं खुद सुनूंगी मुझे बुरा लगेगा, को बाहर का बंदा बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुनेगा कहेगा ये बार बार क्यों कहती हैं, लेकिन मैं फिर कहती हूँ आपको कि आप इन आयतों को सुनते वक्त किसी दूसरे को ना सोचें। ये आपकी दोस्त की बातें नहीं है, ये नन की बात नहीं है, ये भाभी की बात नहीं, ये आपकी मेरी बात है। लेकिन ये हो के रहेगा कि जब ईमान पे आएंगे, उसके तकाजे पूरे करेंगे, तो अपने बेगाने और बेगाने अपने बनेंगे। बहुत इब्तदाई जिंदगी तब मेरी थी इस टर्निंग पॉइंट की, तो किसी का दर्द सुना था तो उन्होंने कहा, एक जुमला बोला था, और आज तक शायद मैंने 20 बार बोला होगा, कहीं ना कहीं जा मौका मिला, कि इस्लाम जब आपकी जिंदगी में आता है ना तो दो तब्दीलियां जरूर आती हैं, कि आपके दोस्त आपके दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। दोस्त दुश्मन कैसे बनते हैं? कल तक आप अवेलेबल थे, भाभी आ जाओ चाय, चलो समोसे बनाए। अब रात 11 बजे भाभी भाभी कहकर आप आए, चाय पानी पी, गप्पे मारी, 2-2.5 बजे उठ के चले गए। वो कह कोई बात नहीं, सुबह वीकेंड है, नमाज का भी वीकेंड है, खैर। अब वो तो खुश हैं, और अब भाभी कह रही हैं कि जिधर आने से पहले कॉल कर लीजिएगा, आपके भाई घर में होंगे तो आइएगा। अब तो गड़बड़ हो गई, बस इल्ज़ाम शुरू, सिला रहमी नहीं कता रहमी, और ये होगा। अब देखते हैं आगे इनके साथ क्या होता है, जैसे कितना थ्रेश होल्ड। आप कहते हैं कि स्पेस शटल जब बनाते हैं ना, सबसे ज्यादा उस पर जो चीज मेहनत की और उसकी कामयाबी की क्या होती है, कि एक दफा जब वो स्पेस शटल यहां से निकलेगी ना, तो उसके अंदर इतना ईंधन और इतनी ताकत हो कि ये ग्रेविटी के असर से निकल जाए। 9.8 के हिसाब से ये जमीन हर चीज को खींचती है। जो स्पेस शटल यहाँ से निकलते ही फट जाती है ना, आपने सुना होगा तजुर्बे लोग करते हैं, इंडिया ने की, अमेरिका ने की, रूस ने की, वो जो फौरन गिर जाती है ना, उसकी वजह क्या होती है कि वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकी, यानी अभी उसमें कुछ कमी थी कि ग्रेविटी का असर तोड़े। बस जो स्पेस शटल ये करके निकली, तो वो फिर ऊपर हिबल और हबल की सूरत में तस्वीरें खींचती है, और ऊपर से दुनिया के वो खूबसूरत रंग देखती है कि आंखें हैरान हो जाती हैं। हम जब अल्लाह के बनने लगते हैं ना, तो ये सोसाइटी का थ्रेश होल्ड, वल्ला ही जिसने एक दफा इसको बर्दाश्त कर लिया, अल्लाह इतने बेलौस आपको दोस्त रिश्तेदार प्यारे देगा कि मैं कह सकती हूँ कि अपने सब अल्लाह सलामत तो रखे। अगर हैं नहीं है तो कोई बात नहीं, हैं भी अल्लाह उनको सलामत रखे। सिर्फ एक खुशी गम और एक अच्छी फीलिंग के लिए आप बात करते हैं, आपको गम नहीं रहता। आपके बच्चों की शादियों पे आपकी बहनें आ सकी नहीं आ सकी, आप परदेश में, आप रोते रहे, नो प्रॉब्लम, मेरी 10 बहनें बैठी हुई हैं, 5 है। अभी पिछले महीने में हम लोगों ने 2 इवेंट ऐसे अटेंड किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक आगे आ रहा है अल्लाह के हुक्म से। मैंने खुद देखा है कि दीन की बुनियाद पर जो मोहब्बतें कायम होती हैं, ना गिले ना शिकवे, ना कोई कहता मुझे पूछा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने भी नहीं पूछते। मुझे पता है कि अपनों की मोहब्बत क्या होती है, और रिश्तेदार कितनी बड़ी नेमत है। वल्लाह ही 100 बेगाने मिल जाएं तो एक रिश्तेदार का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जो दीन के रिश्ते होते हैं ना, वो कितने खूबसूरत होते हैं। इस लज्जत को अगर आपने चखा है तो आप इसकी तस्दीक कर सकती हैं। ना गिला, ना शिकवा, ना लेने की फिक्र, ना देने की फिक्र, पूछा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं, बस एक धुन लगी हुई है और नजरें उस पर लगी होती है जो नहीं आ सका। क्यों, क्या वजह? अल्लाह अकबर। बिलीव मी, एक इतना ग्लोबल आपको बड़ा फैमिली मिल जाती है, ग्लोबल फैमिली बन जाते हैं आप, क्या आपको अपने छोटे छोटे खून के जो रिश्ते होते हैं ना, बल्कि उन पर रहम ही आ रहा होता है कि अच्छा मैं इनको फ़ोन कर लूँ, वो कहेंगे इतने दिन से किया नहीं है, बात तो कर लूँ। ये तो नहीं है कि मोहब्बत कट जाती है, उनका दुख दुख नहीं देता, लेकिन आप बेग फैमिली का शिक हिस्सा बन जाते हैं। अल्लाह के नबी के हदीस का खुलासा है कि अल खल्कु अयालुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और जिसने अल्लाह के कुंबे से प्यार किया अल्लाह उससे प्यार करता है। फिर आपको वाकई वो पता चलता है कि हम सब एक आदम और ईव की औलाद है, कि अल्लाह ने मेरे नफ्स वाहिदा से आपको पैदा किया।
ये मोहब्बत की बात हो रही है दीन के हवाले से, तो मैं यही शेयर करना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यहाँ लाइव बैठे हुए हैं और ऑन साइट पे हम एक दूसरे को देखते हैं, जानते हैं, लेकिन जो मैंने कोर्स किया अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल का, तो उसमें भी इतने अच्छे खूबसूरत साथी मिले कि वो पीछे हैं, जिस तरह सामने तो नहीं है, लेकिन आप बिलीव करें कि इतनी मोहब्बत, कि मुझे याद है कि जब मेरी बेटी मरियम की शादी थी तो बाजी रिफत जो मेरी कोर्स इंचार्ज हैं वो अमेरिका थी, तो उन्होंने यहाँ पे मुझे पूरा मिठाई का टोकरा भिजवाया। और उसके बाद रिजवाना बाजी की भी बेटी की शादी थी, तो भी उन्होंने माशाल्लाह पूरा मिठाई का अम्बाला से उन्होंने कुछ बुक करवा के, मतलब आप देखें कि कहाँ अमेरिका और कहाँ हम एक दूसरे को देखा भी नहीं है, तो हम तो बहुत खुश नसीब है कि
हम क्या फील कर रहे थे उसके घर शादी में,
बहुत इतनी अपनाइयत थी। और अभी भी माशाल्लाह ईसा की शादी है तो सिस्टर नबीला, रिजवाना बाजी सब आने को तैयार हैं, बल्कि ओपन इनविटेशन नॉर्वे भी भिजवाई है कि जिसने आना है सब आए, आप सब रखने के लिए तैयार है ना? इंशाल्लाह ताला
आ रहे हैं कुछ लोग, ये भी बता दूं आपको,
कुछ लोग आ रहे हैं, और वाकई अगर आते हैं तो आप सबकी हेल्प की जरूरत है। और ऐसे ही है कि घर की शादी है और कभी भी एक दूसरे से, अभी भी माशाल्लाह एक ग्रुप बना हुआ है और हम फजर के टाइम पे भी उस पर हम सब अमेरिका से, कैनेडा से, आयरलैंड से सब आपस में बात कर रहे होते हैं, और अल्लाह सुभान तआला का इतना खूबसूरत कलाम है कि इसकी वजह से इतनी मोहब्बत एक दूसरों के दिलों में पड़ गई है। तो हम यहाँ मौजूद हैं, हम भी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें, और अगर छोटी मोटी कोई बात हो भी जाती है तो उसको दरगुजर कर दें, सिर्फ अल्लाह सुभान तआला के लिए बातें होती हैं, लेकिन हमें मोहब्बतों को कायम करना है और एग्जाम्पल पेश करना है कि हम क्या सीख रहे हैं और हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। यकीन जाने फैमिली में भी बातें हो जाती हैं, दोस्तों में भी हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दरगुजर के नहीं, अल्लाह सुभाना ताला के लिए जो है हमने आगे बढ़ना है। इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, ना किसी की सुने और ना करें, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आने वाले टाइम के लिए। जज़ाकअल्लाह खैर,
अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप फजीए जी, थोड़ा सा ऊँची बोलें क्योंकि ऑनलाइन पर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं रोकता, देखिए क्यों कोई रोकेगा,
यही कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, कर सकती
हो। बेशक, ये सिर्फ हमारे अपने दिल में होता है। आप अगर अपने दोस्तों के साथ उसी तरह अच्छे रहे, देखिए आपको मैं एक छोटी सी टिप दे के आगे चलती क्योंकि आगे बड़ी खूबसूरत मिसाल आ रही है तो उसको भी हमने इंजॉय करना है। आप सोचते हैं कि आप मुख्तलिफ हो गए, यानी ये आपके दिल का ख्याल होता है कि मैं अकेली हो रही हूँ, अब मुझे लोग मिल नहीं रहे, मैं कट गई हूँ, खुशी गम में नहीं रही। चलिए आप एक महीने की छुट्टी ले लें, करें सबको खुश, चारों वीकेंड में, दो दिन तो होते हैं ना सैटरडे संडे, 8 दावतें अपने घर में रखें, या चले एक दिन आप कहीं चली जाए, अगले दिन अपने घर पे रख ले, पूरा वीक आप लोगों को अवेलेबल रहिए, करिए, किसी की खिदमत कर रहे हैं, किसी को शॉपिंग करा दें, किसी का बच्चा अपने पास रख ले, बेबी सिटिंग कर ले, कुछ भी कर सकते हैं ना। एंड ऑफ द मंथ आप बैठें कापी पेन लेके और अपने दिल का जायज़ा लें। हर दावत के बाद शिकवे, आपके घर हो या उधर हो, वल्लाही आप किसी के साथ गए ना तो वहाँ आपको लग रहा है कि इससे अच्छा कोई नहीं, मैं इससे अच्छी नहीं, लेकिन उनके दिल में आपको पता भी नहीं होगा क्या क्या आपके बारे में ख्याल आ चुके होंगे। आप दूसरी तरफ बैलेंस रखते हुए, मुझे समझ नहीं आती ये, मैं इतनी हैरान होती हूँ जब भी ये लोग कहते हैं कि जी हम क्लासेस में जब आते हैं तो हम दूसरों से कट जाते हैं, मैं इतनी हैरान होती हूँ इस पे कि ये कहाँ पढ़ रहे हैं। मैं तो नहीं आज तक कटी किसी से, कोई मुझे कहता है ना आपके पास टाइम नहीं तो मुझे गुस्सा आता है, भाई क्या बात करते हैं, मैं सिर्फ 4 घंटे क्लास लेती हूँ इधर, चले 2-3 घंटे मुझे ऑनलाइन क्लास भी लेनी है, चले 2-3 घंटे बीच में मीटिंग्स और सारी चीज़ें पढ़ना पढ़ाना, अल्लाह के बंदो सिर्फ 24 घंटे में 8 घंटे मुझे दे दो तो मेरे पास तो अभी भी 16 घंटे हैं, मैं 16 घंटे सो तो नहीं सकती। यदि अगर आप में से भी कोई कहते हैं ना कि हमें आपसे कोई मिलना है, कोई मशवरा करना है, आपको कहाँ मिले, मोस्ट वेलकम, मेरे पास तो इतना वक्त है कि वल्लाह ये वीकेंड मेरे लिए पहाड़ की तरह लगते हैं, बाहर ना जाना हो मेरे से वक्त नहीं गुजरता। कितना पढ़ेंगे आप, कितना घर की सफाई करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे खौफ आता है कि अल्लाह इतना लंबा वीकेंड है, लेकिन हम जैसे मुसाफिर परदेसी, हमारी तो ज़िंदगी महदूद है ना, लेकिन दिल की खुशी है, इत्मीनान है, सुकून है कि अल्लाह तेरा शुक्र है गिफ्तें नहीं है, चुगलियाँ नहीं है। और आप एक दफ़ा इस रास्ते पे चल के तो देखें, आपको अपने सिवा सब बेचारे और मजबूर दिखेंगे, जो जिस हाल में वो खुश है होने दीजिए, आपकी तन्हाइयां भी खूबसूरत है। जी आप हम
और ये कौन सा दिन है कि तुम बिल्कुल आइसोलेट हो जाती हो, जैसे कल शाम के टाइम पे भी मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, फिर हमारी फैमिली आई हुई थी तो जब मैं अंदर गई तो उन्होंने कहा कि मगरिब का मतलब काउंट करके के इनसे पूछा जाए कि मगरिब का टाइम कौन सा है, लेकिन खुद माशाल्लाह वो भी नमाज पढ़ते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि समझे भी अभी तक हमें वो हिम्मत शायद नहीं है कि हम ऐसी चीज़ों को कैसे हैंडल करें, जब नहीं मिलते जब कट हो जाते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम है, जब मिलते हैं तब भी प्रॉब्लम है, ऐसे मतलब वो हंस के कि मैं वहाँ पर बैठ नहीं रही थी क्योंकि 3 थे तो मैं उधर बैठ नहीं जा रही थी, बैठना नहीं चाह रही थी, वो मुझे बुला रहे थे कमरे में।
मैं आपको एक बात बताऊँ, सबको इन्हीं के नाते से आप दिल की गहराई से लोगों से प्यार करें, हद दर्जे की खैर ख्वाही, हद दर्जे की खैर ख्वाही। आप देखिए ना हम लोगों को क्यों मिलते हैं, मिसाल है कि वीकेंड है, मैं आपके घर आती हूँ, मैं क्यों आती हूँ, आपसे अच्छी बात करूँ, मिलूँ, बैठें, कुछ आप बात करें, कुछ खाएं पिएं, ये है ना। अगर घर बैठ के मैं आपसे इतनी ही खैर ख्वाह रहूँ तो जाने से ज़्यादा मैं आपसे खुश होंगी, बात वाजे। आप मेरे घर आती हैं, मैं दिल की गहराई से आपकी खिदमत करती हूँ, ये खाइए वो खाइए, लेकिन अगर मेरे दिल में खटपट खटपट है आप आपके बारे में, तो क्या मैं वो आपकी मेहमानी करके खुश होंगी। असल चीज़ जो मुझे समझ आई है, पहले अपने दिलों को बड़ा करें, हम खुला करें, कभी ये मानिए ही ना कि कोई आपके खिलाफ बात करता है। जैसे मुझे कोई किसी ने कोई बात कभी कही ना किसी के बारे में कि फलाने ने आपके बारे में ये कहा, तो मैं कहती हूँ मैं नहीं मान सकती, लाइए फ़ोन, मैं अभी उनको फ़ोन करके पूछती हूँ, मैं नहीं मान सकती कि वो मेरे बारे में ये बात कर सकती हैं। क्यों? कि अगर उन्होंने ये बात करनी होती तो वो मुझसे करती, क्योंकि आपसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक उनका मेरे से। अगले को हाथ पांव पड़ जाते हैं, और अगर कभी आप फ़ोन पकड़ लेना लाए ज़रा मैं पूछूं, तो अगला हमेशा अपोलोजेटिक को नहीं नहीं रहने तो मेरा नाम ना बीच में आए। भैया अल्लाह के बंदो मैं मानती कोई नहीं, क्योंकि मैं जो नहीं किसी की करती, मुझे यकीन है मैं आप सबको कह सकती हूँ, आप में से तो किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं इतना बड़ा चौड़ा, पूरे ख़ानदान को बीच में लेके कह सकती हूँ अपने, जहाँ भी हैं ससुराल भी बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 पॉइंट का भी 1/10 हिस्सा उसका भी छोटा करके कोई कहे ना कि गड़बड़ है वहाँ कुछ, या वो आपके बारे में सोच रहा है, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ उसको दुनिया की किसी अदालत में मेरे सामने ले आओ, क्योंकि मुझे यकीन है मैंने किसी की बुराई नहीं की, ना अकेले में ना, क्योंकि मेरे दिल में कोई नहीं है, मुझे तो वो बंदे अच्छे ही लगते हैं जिनके पास मैं बैठती उठती हूँ, हर बंदे में खैर दिखती है। तो जब आप ये सोचेंगे ना कि लोग आपसे ऐसा सोच रहे हैं तो आपको होगा, आपके नहीं, वो मेरे से ज़्यादा किसी से नहीं प्यार करती, उनको मेरे से ज़्यादा कोई नहीं अच्छा लगता, नहीं मुझे उनसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं, और मुझे बिलीव मी मोहब्बत फातह आलम, मोहब्बत एक इतनी बड़ी ताकत है जिसको लोग जानते ही नहीं है। ज़रूरी तो नहीं कि आप मेरे घर आज कल मैं आपके घर, सुबह आप इधर शाम, फिर मोहब्बत है, बाज़ दफ़ा तो ये बेजारी बन जाती है, बाज़ दफ़ा सिर्फ मरव्वत और तकल्लुफ है, ना नहीं कर सकते आप, तब लोगों को मिले जब लोग आपसे मिलना चाहें, ये जुमला लिख लें, आप लोगों को मिलने के नाम पर उनको बोझल ना करें। मुझे अगर दिल के अंदर एक खलिश भी आ जाए ना कि फलाह मुझे मिलके खुश नहीं होगा, मुरवतन मुझे कह रहे आ जाओ, तो वल्लाही मैं ना जाने को खामोश घर में बैठ के उसके लिए दुआ करना, उसका जिक्र खैर करना पसंद करूंगी। हम क्या ऊपर से मिलते हैं, और अंदर से जलते कुड़ते। ज़रा दिल जब खट्टा होता है तो फिर अच्छी बातें तो नहीं दिखती ना। और हमेशा दुआ करें, मकसद पे नज़र रखें। हम जब अपनी मर्ज़ी के खिलाफ लोगों के साथ डील करते हैं ना तो हम फ्रिक्शन पे होते हैं। तो असल बात यह है कि हम अपने ख़ानदान, अपने दोस्त, अपने साथियों से लाइक माइंडेडनेस पैदा करें। और वो कैसे होगी, अब इसका तरीका है। अब आप अगली बातों को सुनते हैं तो बहुत ही बुरा मानेंगे कि सारी बातें ही हमारी गलत है, लेकिन यकीन करें बाज़ दफ़ा हम इस्लाह के नाम पे अगले को शर्मिंदा कराते हैं। अब आप कह सकते हैं कि जो अगला हिस्सा हम करने लगे, जो आखिरी हिस्सा है आज के सबक का, उसमें क्या है कि इस्लाह कैसे की जाए। पीछे तो हमने मुनाफिकों की बातें पढ़ ली ना कि वो किस तरह से मारूफ से रोकते और मुनकर से और इन सारी चीज़ों के मामलात में रखते हैं, लेकिन अब यहाँ हमें पता चलेगा कि मोमिन का मोमिन के साथ ताल्लुक़ क्या है। बल्कि अगर आप इसको एक टाइटल देना चाहें ना तो इंशाल्लाह दे सकते हैं कि मोमिन कैसे लोगों की इस्लाह करें। बुराइयाँ तो हैं चारों तरफ, कुरान का आईना आपके हाथ में जो बहुत चीज़ों को जूम आउट करके दिखाता है, आपको बड़ी बड़ी दिखती हैं। अब लोगों की इस्लाह कैसे करनी है, अगले हिस्से पे चले आयत 71 के। नंबर वन, या मरून बिल मारूफ, वो नेकी का हुक्म देते हैं। ये जुमला आपके लिए कोई नया नहीं है, चौथे पारे से आपने कितनी दफ़ा सुन लिया कि उम्मत मुस्लिमा का वजह मकसद या वजह तासीस क्या है कि कुन तुम खैर उम्मत नुखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ। तो ये फितरत है कि मोमिन फितरत पे होते हैं, मारूफ का हुक्म देते हैं, और मारूफ वही है जो पीछे गुजर चुका, यानी अच्छी अच्छी बातों का हुक्म देते हैं। फिर नंबर दो, वयनहौना अनिल मुनकर, मुनकर से रोकते हैं, यानी मोमिन इतना सफाई पसंद होता है कि कहीं गंदगी का धब्बा नहीं बर्दाश्त कर सकता, और वो मारूफ को इसका इतना हरीस होता है कि अकेले खैर नहीं लेता, वो नेकी उसको मिल जाए, अच्छी चीज मिल जाए, दूसरों को भी कहता है तुम भी ले लो, देखो यहां से सस्ती मिल रही है, ये खूबसूरत है, तुम भी ले लो, और बुराई तुम भी छोड़ो मैं भी छोड़ता हूं। तीसरी सिफत देखिए, वयुकी मुनसलात, और कायम करते हैं नमाजों को। यहाँ नोट कीजिएगा एक जुमला, इन सब पे इकट्ठी बात करूंगी लेकिन आपको तरतीब देना चाह रही हूँ। युकीमून सलात कब आया, दो काम करने के बाद। हम किस पे जोर देते हैं, नमाजें तो हम पढ़ते हैं जी, और क्या करें। नमाज बंदे को जिस चीज के काबिल करती है ना उसको ओवरलुक कर जाते हैं। अमर बिल मारूफ और नहीं बिल मुनकर, यानी दूसरों को अच्छी बातों का हुक्म देख के और बुराई से रोकना यकीमून सलात का मकसद है। यानी नमाज हमें जिस चीज़ के काबिल करती है ना वो ये है कि हम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दें और बुराई से रोकें। वयूतून सका, अगला काम, और वो ज़कात देते हैं। फिर वयुतीउन अल्लाह व रसूलहू, और वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, यानी खुशी से मानते हैं। तौन करहन दोनों बातें हम सुन चुके हैं। ये सारे काम कर लें, कितने काम हो गए, पांच काम हो गए, तो फिर उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह अपनी रहमत फरमाएगा। हम किस रहमत की उम्मीद रखते हैं, बेअमली वाली रहमत, गलत कामों वाली रहमत। अल्लाह रहमत कर देगा अपनी, अल्लाह का रहम नहीं आता गलत कामों पर। और इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला ग़ालिब हिकमत वाला। अब यहाँ आप थोड़ी सी हम बात करते हैं इस बात को देखने के लिए। आप देखिए कि जब अल्लाह सुबहान ताला किसी को भी इस कैटेगरी में शामिल करे तो वो करे क्या, आप इसको यूँ समझिए, मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ इसको रिलेट करना चाहूँगी कि किसी सोसाइटी में बीमारी फैली, जब वहाँ बीमारी फैलती है तो कुछ लोगों को क्या ख्याल आता है कि हम इनका इलाज करें। इलाज करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनना, ठीक है मैं बोलती हूँ आप जवाब देते जाएं। अब डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद जब आप अपने पढ़ने की सारी चीज़ें और हाउस जॉब कर चुके हैं तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, अब आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक स्पॉट चाहिए, कोई क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल जहाँ पे मरीज आएंगे। जब वहाँ पे आप आ गए, सब कुछ हो गया, अब आपके पास आया मरीज, अब आप उस मरीज के साथ क्या काम करते हैं, आपके पास कोई मरीज आया ताने देते हैं, आ गए आप और खाओ रोटियाँ और मोटे बनो और करो नहीं। आप एक मिसाल लीजिए, बिल्कुल याद रखिए कि ईमान वाले का काम एक डॉक्टर वाला है, लेकिन क्या वजह कि एक डॉक्टर जब आपकी बीमारी बताए तो आप उसको पैसे दें फीस के नाम पे और खुश हों और कहें ये सबसे अच्छा डॉक्टर है जो बीमारी बताता है। कभी आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास लोगों को किसी को भेजता देखेंगे जो आपको कह दे जाओ तुम्हें कोई बीमारी नहीं, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, तुम बिल्कुल ठीक हो। लोग क्या कहते हैं, फलां के पास जाओ वो बीमारी बताते हैं। या आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जो दवाई ना दें, कहते हैं पैसे ज़ाया हो गए। और हम पाकिस्तानियों की तो तसल्ली नहीं होती जब तक हमें इतनी दवाइयाँ और इतने टॉनिक और सिरप ना मिले, कहते हैं देखो ऐसा डॉक्टर है गोली दे दी, फलां वो इतनी गोलियाँ देता है, वो इतनी इसलिए देता है कि इसमें कोई तो चलेगी, और जिसने एक दी उसने आपकी बीमारी पर रख ली है। चलिए अब आप टैली कीजिए, अपने पेपर पे एक ऐसे एरो लगा लें, एक तरफ आप हैं या मरूना बिल मारूफ और यनहौना अनिल मुनकर, और दूसरी तरफ सोसाइटी में एक डॉक्टर बैठे हैं। अब आप किसी को मिलते हैं, मिसाल है आपकी दोस्त है, उसने वेट खूब पुट इन किया, मोटी हुई, आप उनको देख के कहते हैं ये क्या बन गई हो, ये तुमने क्या इतनी मोटी हो गई हो, देखो डबल रोटी लग रही हो, ये देखो तुम्हारी आंखें तो अंदर धंस गई हैं। अब आप सोचिए जो ही आप चार छह जुमले ऐसे बोलती हैं कि जिसको सुनकर अगर बेचारी मोटी हो भी गई है लेकिन उसका ब्लड प्रेशर तो हाई होगा ना, अब वो गुस्सा करेगी। फिर आप उसको बताती हैं देखो ये खाओ ये ना करो ये ना करो, वो आपकी कोई बात सुनेगी? पहले ही आपने उसको इतना गुस्सा दिला दिया कि अच्छा मैं मोटी हूं तो तुम कोई पतली हो, है इस तरह की कहानी है। और बात तो सच थी आपकी, वजन तो उन्होंने किया गेन। अब आप सोचिए बिलफर्ज यही आपकी दोस्त चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं नाम पते के बाद आपको पता, वेइंग मशीन पर खड़ा कर देंगे। जब वो वेइंग मशीन पर खड़ी होगी तो उसका एग्जैक्ट वेट सामने आ गया, 5 पाउंड बड़ा था या 10 बड़ा था वो आ गया ना। अब डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि आपका वेट ज़्यादा है इसको कम कीजिए, और उसके तरीके नुस्खे देते हैं। सच बताएं आपकी वो दोस्त अपने डॉक्टर के मुंह से ये मशवरे बातें सुनकर खुश आएगी या रोती भी आएगी? खुश आएगी। डॉक्टर ने भी वही काम किया जो आपने करना चाहा, तरीकेकार फर्क है। बिल्कुल इसी तरह हम जब सोसाइटी से बुराइयां ख़त्म कराने के लिए निकलते हैं ना तो हम बाज़वा केयरलेस तबलीग करते हैं, रह जाते महफिलों में, वो मोटी हो छोटी हो गोलगप्पी और फुला और ऐसी हो गई है और ये हो गई है, तो लोग कहते हैं अब हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। मैं आपको एक नसीहत करूंगी कि अब आप दीन से जुड़ गए, माशाल्लाह आज सुबह बात हो गई ना, 10 पारे तो हो रहे हैं ना, अब माशाल्लाह मिच्योर हो रहे हैं, अपने जुमलों में से वो सारे जुमले खुरच दें जो बेतकल्लुफी के नाम पर आप अपनी दोस्तों और अपने फैमिली के लोगों से बोलती हैं। चाहे आप किसी शादी में बैठी हुई हैं, चाहे मंग जहां भी आप बैठती हैं, मैंने ये नहीं बोलना बिकॉज आई एम मिच्योर नाउ, मैं कुरान की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उनको आपके मुंह से भी अच्छी नहीं लगेंगी। ये फैक्ट है, दीनदार की छोटी बात भी बंदे को चुभती है, क्योंकि उसने जब एक अच्छी बुरी बात से टोकना है तो बंदा बहाना ढूंढ रहा होता है ना कि इसकी भी तो कोई पकड़ूं, तो वो ये पकड़ते हैं। आपस में लोगों को मैंने देखा है तो कर लेते हैं एक दूसरे को, वो करते भी हैं सुनते भी हैं, आज मजाक कर रहे हैं कल कोई उनका करेगा, आज किसी के घर से ज़बरदस्ती खाना खा रहे हैं कल कोई उसके घर से खा जाएगा, चलता रहता है। दीन का जहाँ लफ्ज़ आता है ना लोग उसको देखना चाहते हैं स्टेनलेस स्पॉटलेस, एक हल्की सी बात जो बशरियत की भी होगी वो भी उसको बहाना बना के, चूंकि ये है इसलिए अब हम नहीं इस चीज को लेते, ये नहीं करते वो नहीं करते। तो आपने काम करना है डॉक्टर्स वाला। अब आप देखिए कि जो हमारे दोस्त हैं वो कौन है, आईना है हमारा। आपने अपने आप को देखना हो कि मैं कैसी हूं तो किस में देखते हैं, आईने में देखते हैं ना। अभी भी इस वक्त अगर हम देखना चाहें कि हमारे चेहरे पे क्या लगा हुआ है तो हम किसी आईने में देखेंगे ना, तो जो दोस्त होते हैं ना ये हमारे आईने हैं। आप अपना रियल फेस देखना चाहती हैं ना तो अपने फ्रेंड्स देख लें, आपके इर्द गिर्द किस किस्म के लोग हैं, बस वो आपका असल है। आपके इर्द गिर्द दीनदार हैं मुखलिस लोग हैं, उनको कोई परवाह नहीं आपसे प्रोटोकॉल लेने की, आप उनको ज़मीन पर बिठा दें वो खुश है, वो हाथ पे रोटी रख के उस पर सालन डाल दें कि खा लो तो खा लेते हैं, तो आप समझिए कि ये आप हैं। हम अपने दोस्तों से पहचाने जाते हैं, और एक इर्द गिर्द चापलोस और डिप्लोमेटिक किस्म के लोग हैं और मशवरे कैसे देते हैं तो आप समझ जाएंगी कि वो हमारे दुश्मन हैं। एक मोमिन को हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए। अच्छे लोगों में रहते हुए पता क्या होता है, हम अच्छे ना भी बने तो हमें अपनी बुराई का एहसास मौजूद रहता है, मसलन अगर सब साफ सुथरे पहने उड़े हुए हैं, उनसे कोई स्मेल नहीं आ रही, तो आपको फीलिंग आती रहेगी कि मेरा हाल उलिया ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द वाले सारे स्मेली लोग हों, तो आप नजरकंगी भी की होगी ना, आप कहेंगे चलो मैं इनसे तो बेहतर हूँ। अगर हम अपने लिए मुखलिस हैं ना, तो हम अपने लिए ये काम करें कि हम अच्छे लोगों की सोहबत में रहें। एक अरबी का बड़ा खूबसूरत शेर याद आ गया, उसका खुलासा क्या कहता है कि ये मैं मानता हूँ कि मैं नेक नहीं हूँ, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि मैं नेक लोगों से मोहब्बत करता हूँ। क्यों? कि जब बंदा नेक लोगों से मोहब्बत करता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो नेकी उसमें आने लगती है। अल्लाह के नबी ने कहा कि एक शख्स है जो भट्टी फूकता है और एक है जो खुशबू बेचता है। तुम खुशबू बेचने वाले को दोस्त बना लो, तुम्हें खुशबू नहीं भी देगा ना, तो बार बार ग्राहकों को दिखाने के लिए जब वो शीशी खोलेगा ना, तो उसकी खुशबू तुम्हें तो मिलेगी ना। और जब भट्टी फूकने वाला तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो जो धुआं उठता है, उसकी कालस उठती है, वो तुम्हारा दामन स्याह कर देगी। तो अच्छे लोगों के करीब रहने से बंदा चाहे इरिटेटेड हो, नाने दादे घर में जब होते हैं तो बाज़ दफ़ा बच्चों को बुरे लगते हैं। अब तो खैर हमारे वेस्ट वालों का तो ये मसला ही नहीं है, पाकिस्तान में आज भी है, नानियाँ मौजूद हैं, दादियाँ मौजूद, उन्होंने सुबह उठ के एक आवाज़ लगा दे दी, उठो नमाज पढ़ो, वो तो लगाएंगी, नहीं उठता कोई, लेकिन गिल्ट मौजूद है। लेकिन नानियाँ दादियाँ चली जाती हैं ना, तो फिर कोई नहीं उठाता, फिर सब सोए रहते हैं। तो ये दुआ कीजिए कि हम एक अच्छा सर्कल बनाएं कि जिसमें से खुशबुएं उभरें, और यकीन करें अपने पास रहने वालों की नेकी से नेकी का असर आता है। जहाँ आप रहते हैं ना, वहाँ रहने वालों का असर ज़रूर आता है। ये मैंने अपने ऊपर देखा है, मुझे अल्लाह के हुक्म से इस सारे सफ़र में बहुत सारे लोगों के साथ रहना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह से सोचती हूँ कि जो मुझे उससे फ़ायदा होता है उनको मैं नहीं वो दे पाती, क्योंकि मैं भी सीखती हूँ। जैसा माहौल होता है वैसे बन जाते हैं। जिस किस्म के लोगों में मैं सोचती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू हमेशा मुझे अच्छे लोगों में रखता है, मेरी तबीयत में तो इतनी जल्दी दूसरों से असर लेना है कि खुदा न खास्ता अगर मैं किसी ख़राब माहौल में जाऊँ तो मैं तो सबसे पहले बिगड़ जाऊँगी। जो मोमिनों की मर्द और औरतों की बात है ना, तो यहाँ अच्छे रिश्तों की बात भी है। वल मोमिनून वल मोमिनात, इस हिस्से पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। बेटियों के लिए जब रिश्ते ढूँढें तो नेक लड़कों के ढूँढें, क्योंकि आपकी बेटी अगर मोमिना के दर्जे 90 पे नहीं भी है ना, तो इंशाल्लाह आपका अगर दामाद जो होने वाला है उसका अच्छा रैंक है, वो आपकी बेटी को भी ऊपर ले जाएगा, और यही मामला आपके बेटे और आपकी बहू का भी होगा। लेकिन अगर आपने अपनी बीच के दर्जे की बेटी को, मिसाल है कि 50 ग्रेड का उसका ईमान है, उसको दे दिया कोई 30 ग्रेड का बंदा, तो वो किधर खींचेगा? सोचिए ज़रा हाथ से। लड़कियां शादी के बाद हमेशा अपने ससुराल और जो हस्बैंड्स होते हैं उनसे इंक्लाइंड है, अब वो नीचे खड़ा है उसका नया नया दूल्हा और सास, तो वो किधर जाएगी? नीचे जाएगी। और अगर बेटी 50-30-70 भी है तो वो एक बालिश तो ऊपर खींचेगा ना। हाँ, बेटी ताकतवर है तो सकता है उसको गिरा ले। तो हमेशा रिश्तों का इंतखाब अच्छा करें। आप क्या, अब हमारे तो हो गए, अब क्या करें? इन्हीं को ठीक करें। आपके ऊपर होने की दलील यह है कि वो ऊपर आए। फितरत का असूल है, फितरत का असूल है कि मजबूत चीज अपनी तरफ खींचती है। ये आप देखिए ना कि बल्ब जल रहे हैं, ये छोटे छोटे बल्ब है ना, इस वक्त ये हमें पता भी नहीं चल रहा जल रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में अगर आप इसको जलाएंगे ना, तो ये पूरे कमरे को रोशन कर देगा एक बल्ब भी। जब ट्यूबलाइट चलती है तो नाइट बल्ब नजर नहीं आते। आप ईमान का ऐसा फर्नेस बने कि आपके शौहरों के छोटे छोटे टिमटिमाते हुए ईमान बढ़े। अगर अभी तक नहीं बढ़ रहे तो हो सकता है कि कमी आपके अंदर है, या उनका रंग ज्यादा है, या अभी आपको और मुझे हिकमत नहीं आई, तरीका नहीं आया। तो नहीं आया तो बगली आयतें सुन के तो जरूर आएगा। बड़ी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है।